फिर इसी तरह आप देखिए कि माल के बाद अब औलाद, सबसे आखिरी और मेरे लिए आखिरी इशू हमारे आज के मौजू का, शारिकुम फिल औलाद, शैतान औलादों में कैसे शरीक होता है। सबसे पहली बात, औलाद हो के ना हो इस मामले में दखल देता है, समझ आइए बात की। पहले तो ये फैसला ही नहीं करने देता कि अभी हमें बच्चे चाहिए कि नहीं चाहिए, जी अभी नहीं चाहिए, कभी अबॉर्शन करवा देता है और कभी कहता है कि जी ये हमारे साथ खाएंगे नहीं और स्टडीज कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह करके बंदा इससे निकलता है कि नहीं, जो अल्लाह ने चाहा हमारे हक में बेहतर है वो हो जाएगा, तो उसके बाद फिर औलाद को पीरों और बाबों की नजर कर देता है। पीरा देता, बाबा जी ने दिया, फलां जगह से मिला और उधर से मिला। फिर उसके बाद सोहबत के वक्त दुआ पढ़ने की तरफ ख्याल ही नहीं आता। हदीस में आता है कि जब शोहर अपनी बीवी से ताल्लुक कायम करे और उससे पहले दुआ पढ़ ले कि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क्तना, कि अल्लाह तू हमें शैतान से बचा और अगर इस मुलाकात के नतीजे में औलाद है तो उससे शैतान से बचा, तो अल्लाह शैतान से बचाता है। तो शैतान पहले दिन से हमारी औलादों में आ जाता है। फिर शोहर बीवी के ताल्लुक में हदों को पार करवाता है, खूबसूरत नामों के साथ गंदे लोगों को कॉपी करवाता है जो कभी मुसलमानों ने सोचा भी ना था। फिर इसी तरह पैदाइश के वक्त कचोका लगाता है, जो पीछे बात की थी, ये भी औलाद में शराकत है। फिर इसी तरह से बच्चे की तरबियत में हमारे साथ शामिल हो जाता है, बच्चों को जो हम कपड़े पहनाते हैं उसमें शामिल हो जाता है, बच्चों को जो हम खिलाते पिलाते हैं उसमें शामिल हो जाता है। फिर जवान होते हुए बच्चों के दिल में जिंसी जज्बात उभरवाता है, फिर माँ बाप से बेतनाई पैदा करवाता है, यानी माँ का दूध छुड़वा के शरीक हो जाता है। हर साल मोमबत्तियां जलाकर ईवल स्पिरिट्स वाले नजरिए को प्रमोट करवाता है सालगिरह के नाम पे, हमें पता ही नहीं उसकी पीछे के। आप कहते हैं कि सालगिरह पहली दफा कैसे होती है? जहां से सालगिरह का मफहूम शुरू हुआ था कि इनका ख्याल था कि बच्चा जब पैदा होता है तो मासूम होता है, तो इसके ईवल स्पिरिट्स आती हैं, बुरी रूहें जैसे कह लें, बदरूहें कह लें, तो वो उसको बचाने के लिए ना तो बच्चे के पास मोमबत्तियां लगाते थे। और सिर्फ पहले साल जब शुरू हुई थी ना सालगिरह, सिर्फ पहला साल था, क्योंकि उनको ख्याल था कि 1 साल तक आता है। अब हम 25, 30, 40 उम्र छुपा रहे होते हैं लेकिन सालगिरह मना रहे हैं, ये ना पूछो कौन सी सालगिरह, लेकिन सालगिरह मनाएंगे हम। हाँ, तो इस तरह की चीजें आज हमारे कल्चर में बात, अब बच्चों के सराहने कैंची लोग रख देते हैं, छुरी रख देते हैं, चाकू रख देते हैं, तावीज पहनवा देता है, ये भी औलाद के अंदर शराकत है। और सबसे बढ़ के उसने तो हमारी औलादों को हमारा क्या अल्लाह कभी नहीं छोड़ा, हमें तो पता भी ना चला और हमारे बच्चे शैतान के हाथों में आ गए। टीन एज में बहकाने के लिए डे 1 से प्लानिंग करना शुरू कर देता है, बच्चे के दिमाग में ये ख्याल डालता है कि तुम अपने माँ बाप से बेहतर हो। बस जब हम मॉडर्न होने के चक्कर में अपने फायदे की चीजों को भूल जाते हैं, तो औलादों में शराकत क्या है कि औलादें हमारी तो रह जाएं, उम्मत की फर्द नहीं बनती। आज उम्मत मुस्लिमा को आप देख लीजिए किस तरह से हाल है। आप कहते हैं कि रिस्क हलाल का असर नस्लों तक जारी रहता है। वो एक औरत जिसने दूध में पानी मिलाना चाहा तो उसकी बच्ची ने उसको मना किया, और वही औरत बाद में हजरत उमर की बेटे की बीवी बनी और उमर बिन अब्दुल अजीज की दादी बनी। इतना असर होता है हर रिस्क हलाल का। भूल जाऊंगी लेकिन अगले ट्यूजडे, आज ट्यूजडे है, नेक्स्ट ट्यूसडे से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक कोर्स शुरू हो रहा है ऑनलाइन का, उसमें हमने सही बुखारी पढ़नी है, तो लाइव पढ़ानी है। तो जब ऑनलाइन पे इतने लोग फ़ायदा उठाते हैं तो ऑन साइट पे क्यों ना हो। तो हम लोग इंशाल्लाह एक वेन्यू ढूंढ रहे हैं जिसके लिए एवरी ट्यूसडे और थर्सडे 2 दिन 1 घंटा, पूरा 1 घंटा खींच के, बल्कि 55 मिनट है, 6 to 7 क्लास हुआ करेगी। तो आप इसके बारे में अगर अपना कोई इनपुट देना चाहें, कुछ भी कर लें, कहाँ करें, आप सब पढ़ना चाहते हैं तो भी तैयार हूँ मैं पढ़ाने को आपको, और मस्जिद से बात करनी हो जहाँ भी है तो उसमें इंशाल्लाह आपको इस ट्यूसडे को सुनाऊंगी इमाम बुखारी की कहानी। फिर रोएंगे हम सब कि वो कैसे बच्चे थे और हम कैसे बच्चे पैदा कर रहे हैं, कैसे बच्चे इमाम बुखारी बनते हैं, ये हमारे इस ट्यूसडे का लेक्चर होगा इंशाल्लाह। तो लिहाजा औलादों के ऊपर नजर रखें, इसको इस बेरहम मुआशरे के हवाले करना ये भी शैतान का असर है। तू मेरा नहीं बनता अपना तो बन, ना अपने रहे ना हमारे रहे। फिर इसी के बाद आखिरी चीज भी सौतिक, तरतीब बदल दिया लेकिन मैंने सोचा कि जो अहम चीज है उसको पहले कर ले। शैतान की आवाज का यहां जिक्र है। शैतान की आवाज से कौन सी मुराद है? हर वो आवाज जो हक के रास्ते से रोके, एंटी इस्लाम बातें, इस्लाम के खिलाफ, नबी के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ बातें। फिर तासुब की पुकार, मैं ठीक हूँ, मैं सबसे अच्छी हूँ, मेरा खानदान अच्छा। फिर इस तरह इसकी एक तीसरी तफसीर साज आती है। बहुत बड़े बड़े मुफस्सरीन जो हमारे ओल्ड मुफस्सरीन थे, उन्होंने इन आयतों की तफसीर में लिखा है कि शैतान की आवाज़ से मुराद सांस है, म्यूजिक। शैतान कैसे म्यूजिक के जरिए हमारे अंदर आता है, ये एक लंबी कहानी है। इसको हम इंशाल्लाह देखेंगे जाके आगे, सूरत लुकमान में भी थोड़ा सा, सूरत नजम में भी आएगी। लेकिन यहां जहन में रखिए कि जिस रास्ते से शैतान ने बहुत ज्यादा आज हमें तकलीफ दी है ना, वो म्यूजिक है। हदीस में आता है कि सांस दिल में इस तरह निफाक पैदा करता है जैसे बारिश से सब्जा उगता है। आप आज भी अगर, जबकि तौबा कर चुकी है ना गाने बजाने सुनने से, आज भी कोई गाने के बोल सुने और आपको मजबूरन किसी गानों की महफिल में बिठा दिया जाए ना, तो आप अपने दिल में कुछ तब्दीलियां महसूस करेंगे। जो बच्चे म्यूजिक सुनते हैं ना, उनको कुरान नहीं समझ आता। जब तक आप म्यूजिक नहीं छोड़ेंगे ना, ये कुरान आपके दिल में नहीं बैठेगा, ये तो पक्की बात है। कई लोगों को मैंने देखे कुरान पढ़ने के बाद भी नहीं बदलते, वजह यह कि किसी ना किसी तरफ से म्यूजिक है। जिस हद तक बच सकते हैं आप तो बचें। आप कहेंगे हर जगह होता है, जहाजों में, गाड़ियों में, वहां है। देखिए बैठ के सुनने में तो कम से कम आप छोड़ सकते हैं ना, आपकी अपनी मर्जी के कॉन्सर्ट्स, और आप अपनी टिकटें खरीद खरीद के ऐसे शोज में जाएं और ऐसी फिल्में और गाने सुने, इससे तो बच सकते हैं। एक हैंड आउट है मेरे पास, इसको पीछे लगा दें एक दिन के लिए। इसमें इंग्लिश के कुछ प्रूफ्स हैं कि म्यूजिक के बारे में इस्लाम क्या कहता है, कुरान क्या कहते हैं और हदीस हैं। इसको पीछे एक आध दिन के लिए लगा दें। लेकिन ये याद रखें कि शैतान से अगर हम नहीं बचेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे, वहीं पहुंचेंगे जहां वो जालिम पहुंचेगा। सौत की थोड़ी सी तफसीर मजीद। सौत का एक मफहूम वसवसा, शैतान वसवसे डालता है दिलों में। और वसवसा कहते हैं हवा के चलने से पत्तों में सरसराहट का पैदा होना। तो शैतान पहले दिल में वसवसे डालता है, लोगों के बारे में बदगुमानी, फलां तुम्हारे खिलाफ है, देखो फलां तुम्हारे खिलाफ बातें कर रहा है, तुम्हें सुना रहा है, वो दोस्तें तुम्हारे खिलाफ बात कर रही हैं। ये भी शैतानी एक वसवसा होता है। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि इससे मुराद हर वो आवाज है जो गुनाह की तरफ दावत दे और बुराई की तरफ बुलाए। किसी भी इंसान की आवाज जो बुराई की तरफ बुलाए। और बाज दफा इंसान क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, सब करते हैं, तुम्हारे करने से क्या होगा, तुम गाने छोड़ दोगी तो क्या होगा, तुम भी आओ, वंस अ वाइल, तुम्हारे नफ्स का भी तुम पे हक है, चलो थकी हुई हो रिलैक्स हो जाओ। इब्ने अब्बास मुजाहिद और इमाम सय्यूती, ये हमारे असलाफ में से थे, कहते हैं हुवल गिना वल मजामीर, हर वो आवाज जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल करे वो गाना भी है और आलाते मौसीकी भी है। ठीक है। फिर बुराई की मजलिसों में शैतान उतरते हैं, ऐसी महफिलें जहां शैतान को खुश किया जाए, जैसे अच्छी महफिलों में फरिश्ते उतरते हैं। सूरत मरियम आयत 83 में हम पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या तुमने देखा नहीं कि हम शयातीन को कुफार पर उतारते हैं जो उनको तकलीफ देते हैं। इसी तरह पोइट्री, शायरी, गंदी शायरी, गाने और ऐसी बेहुदा बातें जो हो नहीं सकती, तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ के लाऊं, वो भी सूरह शुरा की आखिरी आयतें हैं 221, बिल्कुल उसमें भी हम पढ़ेंगे हल नबी को मलामन तनजलु शयातीन, कि तुम्हें बताऊं शैतान किस पे उतरते हैं, हर झूठे गुनाहगार पे उतरते हैं। फिर इसी तरह लीडर्स टाइप जो लोग होते हैं ना, उन पे शैतान असर करते हैं इस चीजों में, जैसे फिरौन खराब हुआ तो उसने बाकियों को भी खराब किया। फिर अफराद पर शैतान कब आता है, जब जिक्र से दूर होता है इंसान। वमैयाशन जिक्र रहमानी नुकय्यिज़ लहु शैतान, जो रहमान के जिक्र से मुंह फेरता है हम उस पर शैतान को मुसल्लत कर देते हैं। इब्ने मसूद एक बार बाजार से गुजरे तो बच्ची गाना गा रही थी, तो आपने कहा कि अगर शैतान किसी को छोड़ता तो इस बच्ची को छोड़ देता, लेकिन जालिम ने इसको भी नहीं छोड़ा। फिर इसी तरह आप देखिए कि जो म्यूजिक है ना, अगर आप इसको बैक ट्रैक करके सुने ना, तो इसमें से कुछ आवाजें आती हैं। एक मौके पे जब मैंने ये क्लासेस ली तो वहाँ हमारे पास एक सिंगर आए थे, माजी के सिंगर थे, बाद में, अब तो उनका नाम अब्दुल्ला है, कनाडा के वो साथी हैं, छोटी सी उम्र के थे। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी बताया और हमें करके दिखाया कि जैसे साउंड फाइल्स होती हैं ना, इस वक्त भी मेरे सामने खुली हुई है, एक रिकॉर्डिंग होती है, तो इस तरह फाइल्स होती हैं। अब इसको जब मैं बाद में सुनना चाहूँ, इधर से प्ले करूँगी ना, तो वो प्ले हो जाएगी जैसे सुनी थी। कहते हैं कि एक मौके पे इत्तफाकन जो उनके इंस्ट्रूमेंट्स थे ना, हाथ लगा तो वो उधर से चलने के लिए बैक ट्रैक शुरू हो गया। तो कहते जो म्यूजिक मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था ना, जब उसका बैक ट्रैक किया तो उसमें से कुछ ऐसी आवाजें आई जो बड़ी अनयूजल थी, और जब बाद में उसको सुना गौर किया तो उसमें शैतानी आवाजें थी, देयर इज नो गॉड, देयर इज नो गॉड। फिर उन्होंने वह करके सुना है, ये जो कितने मारूफ गाने हैं बच्चों की, जो पोएम्स नहीं है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो उन्होंने खोला अपने उस पर। फिर उसको जब बैक ट्रैक किया तो उसका साउंड यही थी, देर इज नो गॉड, देर इज नो गॉड, देर इज नो गॉड। फिर इसी तरह उन्होंने हमें एक बच्चे का एक्सपीरियंस बताया कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को कत्ल कर दिया, स्कूल में बच्चा था, अमेरिका की बात है। तो बाद में डॉक्टर्स ने सारा चेक किया क्या है कि, फिर मतलब नफसियाती डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने पूछा कि ये बताओ कि ये बच्चा कौन सा गाना सुनता था क्या। तो एक माँ ने या घर वाले ने बताया कि एक सॉन्ग जो था वो बच्चा बहुत सुनता है। कहते हैं जब उस सॉन्ग को लेकर हमने बैक ट्रैक किया तो उसका एक ही मैसेज था, किल मी किल मी किल मी किल मी। तो उन्होंने बताया कि लाशौरी तौर पर इस बच्चे को ये कत्ल के इतने मैसेज गए कि उसने फिर कत्ल करना शुरू कर दिया। तो याद रखिए इसका असर होता है। फिर आप ये देखिए, एक रिपोर्ट है मेरे सामने, पढ़ दूँ अभी इसी में, फिर कर दूँ ख़त्म इस मौजू को जी। ये जो बच्चे कार्टून देखते हैं उसका इफेक्ट क्या होता है, ये एक पूरी रिपोर्ट है, मैं आपको सुना देती हूँ। एक खास कार्टून की एडिक्टेड बच्ची, यानी एक माँ ने कहा कि एक बच्ची कार्टून खास देखती थी, तो वो एक नफसियाती मरीज हो गई, ना खाती ना सोती जब तक उसको वो कार्टून ना दिखाया जाए। फिर उसके बाद रिसर्च की गई और पता चला कि कार्टून जो है उसके अंदर एक ऐसा मैसेज है कि जिस तरह शराब का नशा हो जाता है बच्चों के आसाब को, जब तक वो चीजें वो तस्वीरें ना दिखाई जाएं तो वो बच्चे मेंटली अपने आप को रिलैक्स नहीं फील करते। एक कंपनी थी कहीं की, लिखा हुआ ये रिसर्च की उन्होंने, $10,000 इनाम रखा कि एक महीने तक टीवी नहीं देखेंगे। यानी उन्होंने एक ऑन कर दी बात कि जो फैमिली एक महीने तक टीवी ना देखे उसको $10,000 इनाम मिलेंगे। तीन फैमिलीज जो थी उनको एक ने 25 दिन बाद, दूसरी ने 15 दिन बाद, और उनमें से जितने लोग थे सिर्फ एक फैमिली थी जो इस वादे पे कायम रही कि एक महीना टीवी नहीं देखना। कुछ दिन के बाद वो मजबूर हो गए टीवी देखने पे। और कहते हैं कि सब नशावर चीजों से बड़ा नशा टीवी का नशा है। फिर इसी तरह कोलोराडो है, अमेरिका की एक सिटी है, तो वहां दो लड़कों ने शूट किया, जब उनसे पूछा गया तो उसके पीछे भी कुछ इसी किस्म की बात थी। फिर इसी तरह जैपनीज कार्टून था एक, उसमें कुछ इतना गंदा स्टफ था कि जिसको वो अडल्ट कार्टून कहते हैं, यानी बच्चे वो कार्टून देखते हैं, है कार्टून लेकिन वो समझे कि न्यूड कार्टून है। फिर वो कहते हैं कि नॉर्मल घरों में से कुछ लोग जो हैं वो टीवी देखते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं कि जो यानी इसके असर से अपने आप को बचाते, कोशिश के बावजूद भी लोग नहीं बच पाते अपने घरों में। कार्टून्स में हर तस्वीर को अलग अलग पेश किया जाता है जबकि मूवीज में क्लिप्स होते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि कार्टून का असर दिमाग पे ज्यादा कहता है कि हर एंगल की एक अलग तस्वीर होती है जिसको जल्दी जल्दी वो गुजारते हैं ना, तो ऐसे लगता है तस्वीरें गुजर रही हैं। पहले तो देखिए बनाते कितनी मेहनत से, और वो बच्चों के दिमाग पे इतनी देर असर रहता है। कार्टून देखने वाले बच्चों में 10 साल की उम्र से पहले वेट ड्रीम्स शुरू हो जाते हैं, सेक्सुअली ये बच्चे जल्दी एनरिच हो जाते हैं। वीडियो गेम्स का असर भी दिमागों पे होता है, मैं खुद एक ऐसे बच्चे से मिल चुकी हूँ, वो नींद पागल हो चुका था, सिर्फ एक स्कूल से आता है बच्चे से, मैंने छोटा बच्चा नहीं था कोई 14-15 साल का, जवान अर्ली टीनेज थी, और घर वाले कहते हैं ना खाता है ना पीता है ना बोलता है ना हंसता है, मेहमान घर में आए कुछ नहीं। मैंने खुद देखा उसको कि वो यूं मगन है कि ड्रंक होता है, जैसे पूरा वक्त वो वीडियो गेम लगाता है, और अगर वो उसको रोकें तो वो तशद्दुद पे उतर आता है, इतनी उसको चिढ़ हो जाती है। रिजल्ट अच्छा ना आया तो माँ बाप ने टीवी बंद कर दिया कि भाई अब आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, तो टीवी बंद कर दिया, 6 माह तक नहीं चलेगा। उसका नतीजा क्या हुआ कि पूरी फैमिली के लोग करीब हो गए एक दूसरे के। इसने आज हमें भी तो दूर किया हुआ है ना, शौहर अलग देख रहा है तो बीवी अलग देख रही है, बच्चे अलग देख रहे हैं, दूरी तो हो गई। फिर इसी तरह आपको तक इन कार्टून्स में जो मजाक किया जाता है इस्लाम का, अलादीन एक बड़ा मारूफ कार्टून है, उसमें फ्रूट बेचने वाला चोरी फल उठाने वाले का हाथ काटता हुआ दिखाया गया। फिर एक कार्टून है जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को लड़कियों वाला फ्रॉक और न्यूड सी तस्वीर में दिखाया गया। ये तो एक रोग है, आप इसके ऊपर बात करेंगे तो बहुत दुखी हो जाएंगे। निंजा कार्टून से बच्चों में वायलेंस आ रहा है, उनको गन्स और इस तरह की चीज़ों के रखने का शौक आ रहा है। फिर वो कहते हैं कि हमने एक एक्सपीरियंस किया कि चलो बच्चों पे तो इफेक्ट होता है, हम जानवरों को दिखाएं, कुछ जानवरों को कार्टून दिखाएं। कहते हैं कि वक्ती तौर पे वो उनके उछलने कूदने की चीज़ों को देख के वो जानवर मुस्कुराए और उसके बाद डीप डिप्रेशन में चले गए। जानवरों तक पे भी इमोशनली इसका असर होता है। आपने कभी सोचा कि हर चीज़ दिन ब दिन महंगी हो रही है, डिश और टीवी सस्ते क्यों होते हैं? इसलिए कि इसको आम करो, ये एक पूरा माफिया है। आप पढ़ेंगे सूरत नूर में जाके कि नल्लज़ीन युहिब्बून अन तशी अल्फाहिशतु फिल्लज़ीन आमनु। एक ग्रुप है दुनिया में जो चाहता है कि ईमान वालों के बीच में फहाशी फैलाए। तो अल्लाह से दुआ करें कि हमें इससे बचने का कोई रास्ता सूझ जाए। मसरूफ नहीं करेंगे, फारिग रखेंगे तो यही हालात होंगे, इसलिए इन सब चीज़ों की कोशिश करके लेके चलें। आज खैल और रिजल कौन है? मीडिया। किसकी बातें, क्या हो रहा है? आप देखिए, जिन चीज़ों से मदद लेके आज हम इस्लाम को फैला सकते थे, आज वहाँ से शर जा रहा है और हम ज़्यादा से ज़्यादा बातें करके पीछे हो जाते हैं। तो लिहाजा इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, हम मुसलमानों को इस तरह के काम करने होंगे। जिस खूबसूरती से वो बुराई को फैला रहे हैं, इतनी खूबसूरती से अच्छाई को फैलाएंगे, फिर इंशाल्लाह वक्त लगेगा लेकिन कोशिश करने से होगा। ऐसे चैनल्स बनाने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ ये कि आप अपने बच्चों को लेकर चलें। ये रशीद करोलिया साहब की एक रिसर्च थी, तो जो मैंने आपको सुनाई है कि उन्होंने इस पर सर्च करके देखी और उन्होंने कहा कि शैतान का मुअज्जिन मौसीकार है। आप पता है कि गाने को शैतान की अजान भी कहा जाता है बाज़ चीज़ों में। और गानों के शेर क्या होते हैं? मर के भी तुमको चाहेंगे, हजार बार तेरे लिए पैदा हुई तेरे लिए मरूंगी, ये कोई इंसानों वाला मुहावरा है? और आप तक अरबी लोग कहते हैं कि जिस शेर में सबसे ज्यादा झूठ होता है वो सबसे अच्छा होता है। इब्ने तैमिया रहमहुल्ला फरमाते हैं, इनकी किताब है रिसाला वजदुस्सीमा, कहते हैं गाने की महफिलों में शैतान उतरते हैं, जिस रक्कास पर मुसल्लत हो जाए वो सामईन के सरों पर आकर नाचता है, और शैतानी वजद में मुब्तला लोग कभी आग में घुस जाते हैं और उनको नुकसान नहीं होता। यानी इस तरह से इंसान का जोश बढ़ता है कि उसको फिर समझ ही नहीं आती कि मैं कैसे हूँ। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारी नस्लों की हिफाजत करें, और रास्ता वही है कि जिसके ज़रिए हम उनको मसरूफ करें। कोशिश करें अपने बच्चों के लिए भी कोई ना कोई मसरूफियत ढूंढें, खुदा के लिए ये गैजेट्स उनके हाथों से हटा दें। एक स्टूडेंट साथी थी तो बता रही थी किसी की बात के वो मियाँ साहब घर में आए तो बीवी ने लैपटॉप पकड़ा हुआ है, बेटे ने आईपैड पकड़ा हुआ है, बेटी आईपॉड पकड़ के बैठी है, छोटा बच्चा फ़ोन से खेल रहा है। तो उसने कहा ये घर है, ये नेट कैफे है, हर बंदे के हाथ में गैजेट है और कोई दूसरे से मैच ही नहीं कर रहा। तो ये किस तेजी से हम जा रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमारी इस्लाह हो जाए। कोई बात कहना चाहें या इस पे? जी आप फरजाना चाहें।
जो आपने अभी टीवी का बताया ना, मैं अपनी दो वीक की रिसर्च बताती हूँ जो मैंने की। मैं समरा को सुबह सारी स्टोरी बताई कि ये सारा मेरे टाइम मैनेज करना था कि मैं 11 बजे ना पहुंचूं। आपने भी एक दफा कहा कि ऐसे ऐसे कमरे में जाया करो, ये सारी लंबी स्टोरी है। तो मैंने ये 3 वीक से 2 वीक से ना अपने पे रिसर्च कर रही कि 10 बजे ना 10 बजे मैंने कमरे में चले जाने इस मनुष्य को छोड़ के, जो भी है जो भी था जो भी है। और वाकई 13-14 साल से मेरी बेस्ट फ्रेंड को पता है मैं 2-3 बजे से पहले सो नहीं सकती, जो भी है। 2 वीक मैंने ये किया और आप यकीन करें आज जो दिन था ना मैं 7:15 से नीचे आई हूँ। और हाँ ये मेरी ये
और कल आप इधर 9:45 इंशाल्लाह पहुंचेंगे, 9:45 कल इधर पहुंचेंगे। उस दिन शैतान आपसे भाग जाएगा। समरा को छोड़ आए, जो नहीं आता उसको छोड़ दें।
मैंने 9:15 घर से निकल आया,
बिल्कुल निकल जाना
है। कैसे आपको सबको मेरी कंडीशन का पता है? और वो जो मेडिसिन है अभी भी आप मेरे कमरे में जाके देख रहे हैं, वो बोरे का बोरा एक कॉर्नर पे पड़ा है माशाल्लाह। मैंने इसलिए आपने पे रिसर्च की कि मैं तो करके देखूंगी,
देखिए ये सिर्फ अपने दिल की बातें होती हैं। अगर आप इससे बच के देखें तो जितना आप बचाएंगे आपका अपना फायदा होगा। मैं सोचती हूँ कि दूसरों के बच्चों को देखकर मेरा इतना दिल कुड़ता है तो उनके माँ बाप का दिल कितना कुड़ता होगा। और इसके जो इफेक्ट्स हैं और जो आंखों पे कानों पे दिल पे दिमाग पे डल नस्लें पैदा हो रही हैं, अपनी जगह से हिलते ही नहीं है। जी आप अरफा
जी, मेरा एक सवाल है एक्चुअली कि हमको क्या ऑल्टरनेटिव देने चाहिए, ये बात तो
टू
जरूरी है।
मैनी टू मैनी। अल्लाह के नबी ने हॉर्स राइडिंग सिखाई, आपने तैराकी सिखाई, आप आउटडोर सरगर्मियों पे बच्चों को ले जाएं, शाम को आप फ्रेश हों, बच्चों के साथ बाहर वॉक पे जाएं, उनसे खेलें, फुटबॉल खेलें, बच्चों को मेंटली बिजी करें और फिजिकली भी बिजी करें। ये जो घरों में भी हमने रखे हुए ना कि जिम में ये मशीन है, कोई नहीं करता, कभी किया आपने? तब तक शौक होता है मशीन का जब तक घर नहीं आई हुई, जिस दिन आ जाती है उस दिन फिर हम नहीं कर पाते। तो नेचुरल लाइफ रखें, चलें निकलें बाहर जाएं, और बाहर भी जाएं तो हम फिर भी उनको लेके ऐसी चीज़ों में पहुंच जाते हैं कि जहां फिर वैसी आवाज़ें ही हो जाती हैं। जी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह इनमें से जो चीज़ें भी आप लोगों के लिए कर दें। जी बहुत आई ओपनिंग है और ये टॉपिक है भी बहुत अहम, शैतान ने किस तरह से हिस्सा लिया, आज क्यों प्रोडक्टिव मुस्लिम्स नहीं पैदा हो रहे। पहले अपने बच्चों को ये एहसास दिलाएं कि हम वन प्लेक्स में नहीं रहते। ये जो आपको गिल्ट है ना कि मेरी बच्चों की ज़िंदगी में फ़न नहीं फ़न नहीं, नहीं होता हम फ़न, हमारा फन आगे है, हमारा फन नमाज में है, हमारा फन इबादत में है, हमारा फन जो है वो रोज़ों में, तहज्जुद में, नमाज में। अपने बच्चों का माइंडसेट चेंज करें, वरना तो फिर आप हमेशा उनसे शर्मिंदा ही रहेंगे। ठीक है, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्किही واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته